ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद आठवां अध्याय 18 नंबर श्लोक के चर्चा करेंगे। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए,
धन्वंतरी भगवान पातु अपद्धात द्वंदत भयात ऋषभ निर्जितात्मा च लोकात यज्ञा च लोकात अवतात जनानंत बलह गणान क्रोधवशात अहिंद्र। धन्वंतरी भगवान पात्वपथ्यात् द्वंद्वात् भयाद् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् अवतात् जनातद बलो गणात्तात् क्रोधभवास्तदन्हित। धन्वंतरी भगवान् पथपत्यपाद्यत द्वंद्वात् भयाद् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् अवतात् जनातद बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्र। धन्वंतरी भगवान् पथपत्या
बलो गणात् क्रोधवशादिन्द्र
धन्वंतरी भगवान पार्थ पद्यात् दंदा भयादृशभो निर्जतात्मा दासलोकसर्वजनात्मा धन्वंतरि भगवान पाथ पत्याद दंद भयादृशभो निर्जात्मा जज्ञस्य लोका तदधात्मात्मा हलो धन्वंतरि भगवान पार्थ पत्यात् कंद भयादृशभो निर्जात्मा जज्ञस्य लोका तदात्मा बलो गणात् क्रोधवशादिन्द्र
माताजी शब्दार्थ धन्वंतरी वैद्यराज धन्वंतरी भगवान श्री भगवान पातु मेरी रक्षा करे अपद्यत स्वास्थ्य के लिए हानिकार वस्तुओं तथा मांस तथा मादक द्रव्य से द्वंद्वात द्विधा से भयात भय से ऋषभ शिव ऋषभ देव निर्जितात्मा मन तथा संयम के वश में रखने वाले यज्ञ च तथा लोकाद जनता के अपयश से अवतात रक्षा करे जन आतात अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न भयानक परिस्थितियों से बलह भगवान बलराम गणात गणों से क्रोधवशात क्रोध सर्प से अहिंद्र शेष नाग के रूप में भगवान बलराम अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थ से दूर रखे और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करे अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी तथा गर्मी के द्वंद से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करे श्री यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करे और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से बचाए। तात्पर्य इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक आपत्तियों का सामना करना होता है जिनका उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। उदाहरणार्थ अवांछित भोजन से स्वास्थ्य को भय रहता है, अतः ऐसे भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस मामले में धन्वंतरी हमारी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, अतः वे चाहे तो हमें अन्य जीवों के उपद्रवों अर्थात अधिभौतिक उपद्रवों से बचा सकते हैं। भगवान बलराम शेष के अवतार है, अतः वे चाहे तो हमें क्रुद्ध सर्प अर्थात ईर्ष्यापूर्ण व्यक्तियों के क्रोध आक्रमण से बचा सकते हैं। जय श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुर्पिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणारघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणाललिता श्रीविशाखानितं स। नमं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों से उनके चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये परमहंसों की संहिता है, तो इसमें बोलने के लिए मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वैष्णव की कृपा से, वैष्णव के आशीर्वाद से मैं कुछ भागवतम के ऊपर बोलना प्रयास करूंगा। तो वैष्णव के चरणों में निवेदन है, आप लोग मेरे पर कृपा दृष्टि करें जिससे मैं श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ बोलने का प्रयास कर पाऊं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम के छठा स्कंद आठवा अध्याय 18 नंबर श्लोक है। तो ये अध्याय का नाम है नारायण कवच, जहां भगवान नारायण के नामों का वर्णन है, जिसके द्वारा, क्योंकि हम जैसे सुनते आए हैं पहले से, किस प्रकार इंद्र ने अपने गुरु के चरण में अपराध किया और जिसके कारण उन्हें स्वर्गलोक से विच्युत होना पड़ा, स्वर्गलोक से उनका राज्य से हटना पड़ा, क्योंकि गुरु के अवमानना से, गुरु की चरण के अपराध से उनको ये दंड प्राप्त हुआ। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मा के निर्देशन में फिर विश्वरूप को गुरु के रूप में ग्रहण किए और विश्वरूप के उपदेश के अनुसार नारायण कवच प्राप्त करके उन्होंने असुरों का दमन किया, फिर स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापन किया। तो यहां नारायण कवच की अलग अलग श्लोकों में जो नारायण कवच के बारे में वर्णन है, नारायण कवच कोई ऐसा कवच नहीं है जो कोई, हाँ अलग प्रकार के कवच होता है जो कोई धातु से बना होता है या कुछ ये बना होता है। तो जैसे अभी भौतिक संसार में बुलेट प्रूफ जैसे ये रहता है, तो ऐसे ही कोई साधारण चीज नहीं है कि उस कवच को धारण करना है। तो यह है एक मंत्र उच्चारित कवच है। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रकार की मंत्र कवच हुए हैं, और पहले युगों में कोई ऐसा धातुओं से बना हुआ कोई कवच नहीं होता था। तो जो भी रक्षा के लिए भगवान की मंत्रों के माध्यम से व्यक्ति का रक्षा प्राप्त होता था। तो अलग अलग हम कवच के बारे में शास्त्रों में उल्लेख होता है, जैसे नारायण कवच, नरसिंह कवच, ऐसे अलग अलग प्रकार के कवच का है, तो ये सब मंत्र उच्चारित है, जो मंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को रक्षा करता है। और हमें भी इस संसार में रक्षा पाने के लिए एक कवच की जरूरत है, क्योंकि भौतिक संसार, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, इस भौतिक जगत में रहने के लिए मनुष्य को अनेक आपत्तियों का सामना करना होता है। तो जो भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में जीता है, क्योंकि भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाशतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धि परमागतः, कि मेरे द्वारा आज बनाया गया भौतिक जगत है, ये दुखालयम अशाशतम है। और श्रीमद भागवतम कहता है, पदम पदम ही विपदाम यतेसा, ये पद पद पर हमें विपद की सामना करना पड़ता है। तो भौतिक संसार में जीने के लिए हमें बहुत प्रकार की कठिनाई आती है, तो इससे रक्षा पाने के लिए हमें भगवान की शरण लेना बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो भौतिक संसार में जीना हमारे लिए दुष्कर है, कठिन है, क्योंकि भौतिक संसार भगवान की ही अध्यक्षता में ही कार्य करता है। भगवान कहते हैं गीता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही श्वेते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते, हे मेरे अध्यक्षता में ये भौतिक संसार कार्य करता है। तो ये भगवान की संसार में रहने के लिए भगवान की निर्देशन का पालन करना या भगवान की कृपा की प्राप्ति करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो इस जो नारायण कवच में अनेक प्रकार के भगवान के नाम का वर्णन है, जिसमें भगवान के अलग अलग नामों के द्वारा अलग अलग प्रकार से रक्षा की प्रार्थना भगवान से हम करते हैं, तो ऐसे ही जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं, जब भी भगवान के ऊपर कोई आपत्ति आता था, माता यशोदा भगवान के अंगों के ऊपर दृष्टि निकालकर वो भगवान को गाय के पूंछ में झाड़ते थे, और वो भगवान के अलग अलग नाम से रक्षा करने के लिए वो प्रार्थना करते थे स्वयं भगवान का। तो इससे हमको पता चलता है हमारे लिए कितना आवश्यकता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भौतिक संसार में रह रहे तो भौतिक जगत जो है अपवित्र है, क्योंकि पवित्र जगत जो है आध्यात्मिक जगत है। तो अपवित्र जगत में हम भी अपवित्र हो जाते हैं, तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, और शुद्ध अवस्था से ही हमारा भगवत चिंतन हो सकता है या भगवान की गुणगान कर सकते हैं। इसलिए शुद्ध की प्रक्रिया भी भगवान है, भगवान के नाम से ही हम शुद्ध हो सकते हैं, और भगवान की प्राप्ति के लिए ही हमको भगवान के नाम का शुद्ध जप करना जरूरी है। तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्था गतो पिबा यह स्मरे पुंडरीकाख्य सवाह्य आभ्यंतर सूची, हे कोई भी पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र अवस्था में हो, अगर वो भगवान पुंडरीकाख्य का नाम उच्चारण करता है तो वो अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। और हम जब भी भगवान के अर्चन करने जाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे कि हम पवित्र हो सके। और जैसे हमारा गौड़ीय परंपरा के अनुसार, हमारा परंपरा के अनुसार कि हमें तिलक करते हैं, 12 जगह तिलक करते हैं और आचमन करते हैं, ये पूर्ण सामान्य आचमन होता है जो 3 बार भगवान के नाम लेके मुख में आचमन करते हैं, और एक विशेष आचमन होता है जिससे कि हम भगवान का पूरी तरीका से, जैसे तिलक मंत्र है ऐसे ही तिलक मंत्र और कुछ 7-8 मंत्र मिलाकर ऐसे हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए पूर्ण आचमन करते हैं। तो इस अध्याय के आगे श्रील प्रभुपाद ने पहले श्लोकों के पहले प्रभुपाद ने इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार आचमन करके इस कवच को पाठ करना चाहिए। तो ये जो इस श्लोक में खास करके भगवान धन्वंतरि के बारे में बताया गया है, जो श्री भगवान यहाँ अनुवाद में कहा गया है, श्री भगवान अपने धन्वंतरि अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थ से दूर रखे और शारीरिक रुगुण से मेरी रक्षा करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं भगवान धन्वंतरि ये स्वयं भगवान की एक अवतार है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान धन्वंतरि ने अमृत कलश लेकर निकले थे, तो इसलिए हमको हमें आशा करना चाहिए धन्वंतरि से कि वही हमारा जो अमृत देकर हमारे सब प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है कि भौतिक संसार में जैसे प्रभुपाद यहां लिखते हैं, यहां रहने का मतलब है हर पग पग हमें विपदा का सामना करना पड़ता है। तो यहां धन्वंतरि से प्रार्थना किया जा रहा है कि हमें अवांछित खाद्य पदार्थ से बचाए, क्योंकि अगर हम हमारा शारीरिक बनावटी किस तरीका से हुए उसका हम नहीं जानते हैं और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके अगर ऊपर अगर हम नहीं ध्यान देते हैं तो क्या होता है, हमें रोग उत्पन्न होता है शरीर में, अनेक प्रकार की रोग आता है। तो इसलिए हम शुद्ध आहार का भोजन करना चाहिए और अवांछित खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए, और ऐसे करने से हमारा शारीरिक जो शुद्धिकरण रहेगी, हाँ शुद्ध रहने से जैसे कहा गया आहार शुद्धि सतशुद्धि सतस्मृद्धि दुभा स्मृति, आहार शुद्ध होने से हमारा चेतना शुद्ध रहेगा और चेतना शुद्ध होने से हमारा स्मृति भी शुद्ध रहेगा। जैसे कि अगर हम हमारे जो वैष्णव धारा में भगवान की भोग लगाया ही भोजन खाने के लिए हमारा आचार्य लोग कहते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्योंकि भगवान की अर्पित भोजन पवित्र होता है। खाली भगवान की पवित्र भोजन नहीं, भगवान स्वयं भगवान जिस प्रकार पवित्र है, भगवान की से जुड़े हुए सभी वस्तु पवित्र होते हैं। तो हम भगवान की किसी भी वस्तु को ग्रहण करने से हमारा शुद्ध क्रिया प्रक्रिया चालू होता है। तो इसलिए हम जो भी भगवान की अगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा सुनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते अघम पापा जी पश्यन्ते आत्मकारणा। जो भगवान यहाँ यज्ञ में आहुति दिए बिना, जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन खाता है वो क्या खाता है, पाप खाता है। इसलिए भगवान को जब हम भोग लगाते हैं हमारा खाद्य पदार्थ वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे भोजन खाने से हमारा अंतकरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि प्रसाद सर्व दुखानम, प्रसाद खाने से हमारा सभी दुख नष्ट हो जाता है। हाँ प्रसाद मतलब प्रसाद भी होता है और भगवान की कृपा भी होता है, तो दोनों से भगवान की कृपा से हमारा सभी प्रकार की रोग नष्ट हो सकता है। इसीलिए भगवान की कृपा हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। भगवान की कृपा के बिना आप भौतिक संसार में कोई नहीं जी सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, कोई बहुत बड़ा रईस व्यक्ति होगा बहुत धन संपत्ति होगा लेकिन रोगग्रस्त हो गया, रोग में पीड़ित हो गया, अगर जैसे कहा गया है मारे हरि रखे के राखे हरि मारे के, अगर भगवान हरि रखना चाहते हैं कोई नहीं मार सकता है, कितना भी भयानक रोग हो जाए कोई मर नहीं सकता है अगर भगवान रक्षा करना चाहते हैं। हमारे सामने ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे श्री श्रीमद जगतक स्वामी महाराज अंतिम समय में बेड पे पड़कर सब लोग आस छोड़ दिए थे हम कि महाराज का क्या होगा, लेकिन भगवान हाँ और भक्त के प्रार्थना से और भगवान के आशीर्वाद से वो आज स्वस्थ होकर प्रचार कर रहे पूरा इस्कॉन में। तो भगवान जिसे रखना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, लेकिन हम देखते हैं भौतिक संसार में बहुत से लोग अनेक प्रकार की हाँ पैसा बहुत खर्चा करते हैं, बहुत डॉक्टर आ जाते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, छोटा से रोग में उनका उनका मृत्यु हो जाता है, छोटा सा बुखार आता है वो मर जाते हैं। तो इससे पता चलता है जब तक व्यक्ति के ऊपर भगवान के आशीर्वाद ना हो वो कभी इस संसार में जी नहीं सकता है और मर नहीं सकता है। जब भी भगवान की इच्छा होता है, भगवान जब चाहता है व्यक्ति मृत्यु और जीवन में इस संघर्ष से बच सकता है। तो हमें भौतिक संसार में जैसे कि यहाँ कहा गया है जो खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए, तो हम भौतिक संसार में जी रहे और आज के समाज में ऐसा परिस्थिति है हम जो भी खाद्य खाते हैं वो सब दूषित हो चुका है, जितने भी केमिकल है सब उस खाद्य में जहर है। तो ऐसे पदार्थ से हम किस प्रकार बच पाए, भौतिक संसार में हर फल में हर साग सब्जी में सब प्रकार की केमिकल दिया जाता है, तो हम पल पल में जहर खाते हैं, तो इस जहर से कैसे बच सकते हैं, इस जहर से हम किस प्रकार रक्षा पा सकते हैं, क्योंकि हमारा जीव को तुष्ट करने के लिए हम अनेक प्रकार के व्यंजन खा सकते हैं, हमको अच्छा लगता है हाँ। लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो हमें इस प्रकार के खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। को जो जीभा हाँ शास्त्र में भी कहा गया है जीभार लालच सारी जिए इथे उथे धाये शिष्ण उदर प्रायण कृष्ण नहीं पाए, वो जीव की लालसा में इधर उधर दौड़ता है वो कृष्ण को प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमें कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि हम जीव के लालसा में अगर अवांछित पदार्थ खाते हैं तो हमारा चेतना पे इसके असर पड़ता है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग गुरु लोग हमें और कहते हैं कि हमें भोग लगा के ही खाना चाहिए। जब भी हम नए लोगों को प्रचार भी करते हैं उनको ये निर्देशन देते हैं कि हमें भोग लगा के खाइए, क्योंकि भोग लगाने से ये क्या होता है हमारा चेतना पे शुद्ध होता है। था भौतिक समाज में जितने भी हम पदार्थ खा रहे वो विषैला है, तो हम इसके लिए कुछ बड़ा तरीका से समाधान नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा बहुत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमारा तलासरी में गौशाला है हाँ, दूध आता है तो दूध में भी अलग प्रकार के हाँ केमिकल होता है ये होता है, तो उसको हम बचने के लिए हम खुद का गौशाला है उससे दूध मंगाते हैं हाँ, और धीरे धीरे प्रयास करते हैं साग सब्जी भी आए, तो ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारा अभी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमको तो बाहर की जहर खाना ही पड़ रहा है, तो ऐसे खाना से कैसे बच पाएंगे। जब भी हम भगवान के नाम लेते हैं तो ये नाम के द्वारा भगवान की कृपा से ही, जैसे यहाँ कहा गया है भगवान धन्वंतरी ही हमें ये अवांछित खाद्य पदार्थ से बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में है और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं वैष्णवा अग्नि के रूप में अंदर बैठा हुआ। तो अगर हम भगवान को प्रार्थना करेंगे तो भगवान स्वयं अंदर हमारे पाकशाला में पेट के अंदर बैठे हुए जो हमारा भोजन पकाते हैं, तो उनके कृपा से हमारा अवांछित पदार्थ भी यहाँ जैसे कहा गया यज्ञ जो भगवान यज्ञ, ऐसे भगवान हमारे यज्ञ क्या है वो अग्नि स्वरूप है, तो ऐसे ही हमारे अंदर अग्नि जल रहा है, तो उस अग्नि से हमारा जो अवांछित खाद्य पदार्थ है वो नष्ट हो जाएगा, भगवान हमें रक्षा करेंगे इससे। तो इसलिए हमें भगवान से यहाँ जो नारायण कवच है इसमें कोई बड़ा महत्व किसमें दिया गया है कि वो नाम के ऊपर भगवान के नाम है, ये कवच मतलब एक भगवान का नाम, भगवान के नाम समूहों से ये कवच तैयार हुआ है, तो इस कवच को धारण करने से हम विपदा से बच सकते हैं। तो ऐसे हम अनेक शास्त्रों में अनेक उदाहरण पाते हैं जो भगवान के नाम लेने से व्यक्तियों का दुख दूर हो जाता है, जैसे कि इस शास्त्र में कहा गया है अकाल मृत्यु हरस्य सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद तकोपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये शास्त्र कहता है जो व्यक्ति भगवान के चरण के चरणामृत पीता है उसका क्या होता है, अकाल मृत्यु हरस्य। हाँ, देखते हैं लोगों का मृत्यु कैसे भी एक्सीडेंट में हो जाता है कभी, हाँ ये अकाल मृत्यु है, काल नहीं आता है, बाई चांस सडनली उसका मृत्यु हो जाता है, अकाल मृत्यु हरस्य। ऐसे मृत्यु से भगवान के चरणामृत पीने से हम बच सकते हैं। हर सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की रोगों से रक्षा मिलता है। तो आप लोग कह सकते हैं हम डेली पीते हैं भगवान की चरणामृत, तो हमको भक्त लोग अनेक प्रकार की दुख से पीड़ित क्यों होते हैं। तो हम इसका अर्थ ये है कि हम इस चरणामृत को चरणामृत जैसे नहीं पीते हैं, वो भाव नहीं है हमारे अंदर। जो भगवान गीता में कहते हैं जो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य माम अनुवर्तन्ते वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसम। जो जिस भाव से मेरा शरण ग्रहण करता है मैं उसको उसी भाव के दर्शन देता हूं। तो हम चरणामृत पीते हैं किस भाव से वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार की कठिनाई है, इससे बचने के लिए अनेक प्रकार के रोग है। तो इस रोग से कोई डॉक्टर, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट होने से, बहुत से पैसा खर्चा करने से हम ठीक नहीं हो सकते। तो भौतिक संसार में भौतिक रोग से तो हम ग्रस्त ही है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा रोग है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भव रोग से हम पीड़ित हैं। तो हमें डॉक्टर छोटे मोटे रोग से रक्षा कर सकते हैं, वो भी उनके बस की बात नहीं है। अगर भगवान की कृपा होगा तभी वो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमें तो बहुत बड़े बीमारी हुआ है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें भव रोग हो गया है। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यही है कि हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। अरे ना जन्म होते ना मृत्यु होता, ना ये शरीर बार बार ग्रहण करते, ना ये दुख पाते हम। तो शरीर ग्रहण करने के कारण ये भौतिक संसार में हम दुख पा रहे हैं। तो शरीर कारण है हमारा दुख का, इसलिए शास्त्र कहता है शरीर व्याधि मंदिर, शरीर जो है रोग का घर है, मंदिर है। यहाँ रोग ही पूजा पाते हैं, जैसे मंदिर में भगवान पूजा पाते हैं, इस शरीर रूपी मंदिर में रोग का ही पूजा होता है, रोग का उपचार होता है, कुछ ना कुछ रोग निकलता रहता है, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, कभी बुखार, कभी ऐसे हम अनेक प्रकार की कठिनाइयों में भ्रमण करते रहते हैं। तो इससे रक्षा पाने के लिए हमें भगवान के जो यहां नारायण कवच का उपदेश दिया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें जैसे कि शास्त्र में कहा गया है अच्युतम अनंतम गोविंद नाम उच्चारणम भवेश जथा नश्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। ये भगवान धन्वंतरी ये श्लोक कहते हैं जो व्यक्ति अच्युतम अनंत गोविंद भगवान के नाम उच्चारण करता है उसके सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाता है, भव रोग नष्ट हो जाते। सत्यम सत्यम बदाम्य हम, कहते हैं मैं सत्य 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 तीन बार कह दिए। जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, वहां भी तीन बार कहे। क्यों? क्योंकि यह हमारा इतना बुद्धि नहीं है कि हम उसको ग्रहण कर पाए, इसलिए हमें जो भी बार बार कहने पर ही हम करते हैं। इसलिए हमें शास्त्र हो या आचार्य हो या भक्त हो, हमें सब चीजों को बार बार उपदेश देते रहते हैं और यह हमारे लिए लाभदायक है। हमें इससे विरक्त नहीं होना चाहिए कि ये भक्त हमें बार बार क्यों पीछे पड़ा है, क्यों बार बार कह रहा है। कभी ऐसा होता है कोई भक्त हमारे पीछे पड़ते हैं, कुछ चीज के लिए सुधार के लिए, तो हम सोचते हैं ये हमारा दुश्मन है, ये इसलिए हमारे पीछे पड़ा है, नहीं हमारे कल्याण के लिए ये करते हैं। तो जैसे शास्त्र हमारा कल्याण करते हैं, जैसे भगवान हमारे कल्याण चाहते हैं, ऐसे भक्त भी हमारे कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए भगवान की नाम के जप के द्वारा यहां नाम की ही महिमा का वर्णन हुआ है। भगवान के अनेक प्रकार के नामों का वर्णन करते हुए नारायण कवच का पाठ बताया गया है। तो यहां भगवान के नाम की महिमा है, तो इससे हम रक्षा कर पा सकते हैं हमारे जीवन में। तो ऐसे शास्त्र में अनेक वर्णन है, अनेक प्रकार के भक्त हुए जो भगवान के नाम उच्चारण से बड़े बड़े विपदि से रक्षा कर अपने आप को कर लिए। तो ऐसे ही भक्त हुए जिनका नाम था सालवेग, जगन्नाथ पुरी से हैं और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे सालवेग। तो ये लाल बेग के पुत्र थे जो एक मुस्लिम था। उस समय उड़ीसा में जब आक्रमण हुआ मुस्लिमों का, तभी लाल बेग ने एक ब्राह्मण स्त्री का अपहरण किया और जबरदस्ती अपना पत्नी बनाकर रखा, और जिनके गर्भ से ये सालवेग का जन्म हुआ था। और ये सालवेग कुछ समय की बात है, वो किसी कुछ रोग से शायद वो अपने पिताजी के साथ युद्ध पे गए थे और उनके शरीर पे चोट लगा, और चोट के कारण उनका शरीर का जो घाव है वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उनका जो माता थे वो ब्राह्मण कुल से, और सालवेग स्वयं कहते हैं, उड़िया में एक भजन है, बाप मो मोगल पुओ मामो ब्राह्मणी जे कुले जनमिली मो हिंदू न खाए मो पानी। और कहते हैं मेरा पिताजी जो है वो मुस्लिम है, मोगल अपुओ, और माँ कौन है, ब्राह्मणी, ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, ब्राह्मण खानदान से, और मैं ऐसे कुल में जन्म हुआ हूं हिंदू मेरे पानी को ग्रहण भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने अंतिम समय में जब ही अपने शारीरिक घाव से पीड़ित थे, उनके माँ जो जगन्नाथ जी के भक्त थे, जगन्नाथ के ऊपर उनका बहुत आस्था, भगवान जगन्नाथ को बहुत मानते थे, तो उन्होंने कहा तुम भगवान जगन्नाथ का स्मरण करो, उनका नाम का जप करो, और जिसके कारण तुम्हारा रोग व्याधि ठीक हो जाएगा। तो इतने वो कष्ट में थे कि उनके माँ के वाक्य को मानाए और कहे अगर जगन्नाथ के कृपा से मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जगन्नाथ का भक्त बनकर जगन्नाथ की सेवा में मेरा जीवन अर्पण करूंगा। और जैसे ये सोचकर उन्होंने निश्चय किया, कुछ दिन के बाद सालवेग की शारीरिक रोग पीड़ा सब ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त बने और अनेक प्रकार के, उन्होंने उड़िया भाषा में अनेक प्रकार के भजन लिखे हैं। तो उड़ीसा में बहुत इनके भजन प्रचलित है, तो इनके भजन को बहुत भक्त लोग गाते हैं। तो ऐसे भगवान के नाम उच्चारण मात्र से हमारा सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाता है। मुकुंद माला स्त्रोत्र में कहा गया है, सर्व औषधम मंत्रम जप जप सततम संसार त्राण मंत्रम, कि सभी रोगों का निवारण करने वाला औषध है मंत्र, और मंत्र के माध्यम से ही हमारा सभी प्रकार के भौतिक रोग, और जैसे तीन प्रकार के कष्ट में है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये भी एक प्रकार की रोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये सब रोग है, ये सब तकलीफ है हमारे लिए, कठिनाई है। इससे हमें बचना है तो हमें भगवान के नाम की जप करना जरूरी है। ये सभी शास्त्र कहता है, हाँ, वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतस्तथा आदि अंतश्च मध्यंच हरि सर्वत्र गीयते। वेदों में, रामायण में, पुराणों में, सभी महाभारत में और सभी शास्त्रों में आदि और अंत में यही वाक्य कहा गया है, हरि के नाम का ही कीर्तन किया गया है। और इस हरि नाम से ही, भगवान के नाम से ही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र के जप करने से हमारा सभी प्रकार की रोग नष्ट हो सकता है। इसीलिए हमें महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व भी यहां प्रकट हुए, उन्होंने हमारे कल्याण के लिए इस मंत्र का उपदेश दिए और इस मंत्र के द्वारा ही हमारा सभी प्रकार के रोग ठीक हो सकता है। और मंत्र के कारण ही हम, जैसे यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, ईर्ष्या आलु लोगों से बचाए भगवान हमें। हाँ, तो भगवान के नाम जब से ही, देखो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु झारीखंड जंगल में पुरी से होकर वृंदावन जाना था, झारीखंड जंगल होके जा रहे थे, तो उस जंगल के प्रांत में जब ही चल रहे थे, अनेक प्रकार की हिंस्र जंतु थे जो ईर्ष्यालु, हाँ, उनके लिए कोई ज्ञान नहीं रहता है, वो सभी व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैं। जो पशु होते, पशु स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर ईर्ष्यालु भाव रहता है। तो महाप्रभु ने वो दर्शाया, भगवान के नाम से, नाम लेने से पशु पक्षी जो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, वो व्यक्ति भी ईर्ष्या भूलकर अपने आप में प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। महाप्रभु ने झारीखंड जंगल में जाते हुए दिखाया, जंगल के पथ में चलते हुए दिखाया किस प्रकार सिंह और हरिणी अपने आप में आलिंगन करके, चुंबन करके, वो भगवान के नाम लेकर नाच रहे थे। तो भगवान के नाम लेने से एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसका ईर्ष्यालु भाव चला जाता है। तो भगवान के नाम में सब कुछ है। देखिए, जैसे कि 100 के नोट में 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया सब उपस्थित है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के नाम में सभी नाम भगवान के ऊपर उपस्थित है। जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के सभी नामों का उच्चारण होता है, क्योंकि ये महामंत्र है, सभी मंत्रों का सार है ये। तो इसलिए हमें महाप्रभु कहते हैं कि हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए। महाप्रभु खुद करते थे और ये हमको शिक्षा देने के लिए स्वयं हरिदास ठाकुर को वो नामाचार्य बनाए, जिसे हाँ कोई लोग करते हैं, नाम का जप करते हैं तो दूसरे को बताते नहीं। जैसे कर्ण मंत्र रहते हैं, तो उनको पूछा जाए तो बोलते हैं हमारा गुरु ने कर्ण मंत्र दिया, हम किसको इसको बताएंगे नहीं। हाँ, कुछ मंत्र होता है तो बताते नहीं, कुछ बताते हैं तो करते नहीं खुद। लेकिन हरिदास ठाकुर उन्होंने खुद करते थे। हाँ, आचार प्रचारक करे, हाँ, आचार प्रचारक करे तुम्हें दुही कार्य, तुम्ही गुरु तुम्ही जगतेर आचार्य। तुम खुद आचरण करते हो और इसका प्रचार भी करते हो, हाँ, तुम्ही गुरु हो और तुम्ही ये आर्य हो, से तुम खुद शिक्षा देते हो। तो महाप्रभु ने हमें हमारे कल्याण के लिए, हमारा ऊपर कृपा करने के लिए वो अनेक प्रकार से, अनेक तरीका से हमें सिखाए उन्होंने, और किस प्रकार के हमें उपदेश नहीं दिया उन्होंने, खाली यही उपदेश दिया हमें किस प्रकार भगवान के नाम को जप करना चाहिए। तो ये भगवान के नाम में सब कुछ उपस्थित है, नाम में भगवान का रूप गुण लीला सब विद्यमान है। हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि नाम उपस्थित है रूप गुण कर्म, भगवान के नाम में भगवान का रूप गुण कर्म लीला सब कुछ उपस्थित है। तो भगवान के नाम लेने से हमारा सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं। तो जब हम भगवान की नाम लेते हैं तो हमारा सब प्रकार की शुद्धिकरण होता है। तो भगवान की नाम इसीलिए भी नहीं लेना चाहिए कि हमारा दुख दूर हो। तो भगवान गीता में कहते हैं, चतुर्वेद्य भजन्ते मा जना सिकृति न अर्जुन आर्थी अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतश्रवा। ये चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं, आर्थी, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो लेकिन भगवान कहते हैं इससे भी बढ़ मुझे सबसे प्रिय कौन होता है, ज्ञानी होता है। तो भगवान को ऐसे व्यक्ति प्रिय नहीं होता है कि जो धन या दुख के लिए भगवान की शरण ले, या धन संपत्ति के लिए, ये ज्ञान माध्यम से। तो भगवान को वो व्यक्ति प्रिय होता है जो भगवान की भक्ति में रत होकर कोई आशा किए बिना भगवान की सेवा भाव से ही भक्ति करता है। तो भगवान के नाम जप हमारा है इसलिए होना चाहिए कि हम किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर पाए। ये रोग भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, जो बाप होता है बेटे की तकलीफ को जानते हैं, वो ठीक कर सकते हैं, उनको बिना बोले वो सब कुछ बेटे का पूर्ण कर लेते हैं। तो भगवान को हमारे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो भगवान को हमारा भगवान का नाम इसलिए जप होना चाहिए कि हम किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त कर पाए। सेवा प्राप्त करने से, भगवान की सेवा करने से, जैसे हमें कहा जाता है जब हम भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो हमारा जो काम रोग है वो नष्ट हो जाता है। तो जब हम भगवान के सेवा करते हैं अनेक प्रकार के हमारी रोग नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवान की नाम की जप करना चाहिए। तो भक्त का ये आशा नहीं होना चाहिए। हाँ, भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। हे प्रभु, तुम्हारे चरण में मेरा यही निवेदन है कि मुझे देह सुख, हाँ, और विद्या धन जन ऐसे कोई लालसा नहीं है, कि मेरा यही मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, ये मेरा आशा है तुम्हार चरण में के अहेतु की भक्ति मरो जागु अनुक्षणे। हे अहेतु की कोई भक्त मेरा हेतु ना हो, ऐसे भक्ति मेरे हृदय में बारंबार प्रकट होए। तो हमारे आचार्य लोग, बड़े बड़े आचार्य, वही हमारे लिए वही शिक्षा देते हैं कि हमें भगवान के पास ऐसे भौतिक विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से नहीं जाना चाहिए। तो हमें जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के चरण में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जाता है। धन जन नाही मागी, कहते हैं धन और जन नहीं मांगता हूं, हाँ, शुद्ध भक्ति दियो मोरे कृष्ण कृपा करी। हाँ, कृष्ण, हे कृष्ण मुझे शुद्ध भक्ति दो। अगर व्यक्ति कृष्ण के शरण में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है तो भौतिक संसार से ही उसका नाता टूट जाता है। तो व्यक्ति भौतिक संसार से बाहर निकलने के बाद, भौतिक संसार में ही रोग है, भौतिक संसार में रहना ही तकलीफ है। तो जब हम भौतिक संसार को छोड़कर भगवान की आध्यात्मिक लोक में चले जाते हैं तो वहां भगवान क्या कहते हैं, न तद भासते सूर्य न सशंक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं ब्रह्म। ऐसे मेरा धाम है, और जो उस धाम पे जाने के बाद फिर भौतिक संसार में नहीं आता है। तो इसलिए हम जब भगवान की भक्ति में भगवान की नाम जप करते हैं तो हमारे शुद्धिकरण होने से हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, और शुद्धिकरण से भगवान प्राप्ति करने से हमारा सभी प्रकार के भौतिक कष्ट दूर हो सकता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जैसे कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य पदम जसो मुरारे भवाम्बुधि वर्ष पदम पदम परम पदम 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 यद विपदाम यतेषाम। के जो व्यक्ति भगवान मुरारी के शरण में जाता है वे भौतिक संसार उसके लिए गाय के खुर के समान हो जाता है। तो एक छोटे से बालक को भी गाय के खुर की जल को लांगना आसान होता है। इसी प्रकार जब हम भगवान मुरारी के शरण में जाते हैं, भगवान की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे भगवान के नाम जपने से हमारा सभी प्रकार की कठिनाई छोटा बन जाता है। तो इसलिए आप लोग से निवेदन है, आप लोग आशीर्वाद करिए जिससे कि मैं भगवान की भक्ति में लगे रहूं और आप जैसे वैष्णव लोगों का सेवा कर पाऊं, जिससे कि मेरा अंतकरण शुद्ध हो और मैं भगवान की सेवा में मेरा जीवन अर्पित कर पाऊं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो मेरा कुछ योग्यता नहीं है आपका प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन आप कोई आपका टिप्पणी है तो बता सकते हैं, और प्रश्न है तो बताइए। यहाँ वरिष्ठ भक्त लोग है, अगर मैं नहीं बोल पाऊं तो वरिष्ठ भक्त लोग इसका उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। प्रश्न है किसका? कोई कमेंट? श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंदे।